ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोकारो और गढ़वा में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रांची में एक रोड शो में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन भवनाथपुर, तमाड़ और खिजड़ी में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव चतरा के हंटरगंज में रैली करेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। श्री शाह उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र के जलगांव, बुलढाणा और अमरावती में कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र में शुक्रवार तक 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। इसमें पंजाब में 6,58,000 किसानों को लाभ मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ग्रेड ए धान को तय एमएसपी 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर ही खरीदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में कल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। 2 से 3 आतंकवादियों के अभी भी वहां छिपे होने की खबर है। भारत के 7 संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली 44वें और आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी ने मनोरंजन की दुनिया को जीवंत तथा और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इफ़ी एस्टा आयोजित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य फिल्मों के प्रभाव, खान पान, कला और संवादात्मक अनुभवों के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। इफ़ी एस्टा का आयोजन 21 से 28 नवंबर के दौरान गोवा में पणजी में कला अकादमी में किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि की प्रस्तावना के अनुसार ये संधि दोनों देशों के हितों के अनुरूप क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए है। संधि में कहा गया है कि रूस और उत्तर कोरिया संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिबद्धता, समानता तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति के अन्य सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और अन्य देशों के साथ मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों का समर्थन करते हैं। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। ये योजना कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक प्रमुख साधन है। माना जा रहा है कि कनाडा में चल रही आवास और संसाधनों की कमी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। आज मॉरिशस में संसदीय चुनाव हो रहे हैं। मतदान भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम 7:30 बजे तक चलेगा। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के गठबंधन लेपेप ने अपने प्रचार के दौरान देश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, पेंशन तथा आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर को कम करने का वादा किया है। विपक्षी अलायंस डू चेंजमेंट गठबंधन ने भी पेंशन बढ़ाने का वादा किया है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु में गरज और चमक के साथ तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। शुक्रवार तक केरल, माहे, पुदुचेरी और कराईकल में वर्षा जारी रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिमी पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।